नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन की नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना यात्रा के दौरान विश्व नेताओं के साथ अनेक द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लाओस की राजधानी वियंतियाने में जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकातनी से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिल्ली के कानून व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 10 माओवादी मारे गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज पर्थ में खेला जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन की नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना यात्रा के दौरान विश्व नेताओं के साथ अनेक द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 31 द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया और वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत भी की। श्री मोदी ने नाइजीरिया में 1, ब्राजील में 10 और गुयाना में 9 द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इसके अलावा उन्होंने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मिस्र, अमरीका और स्पेन के नेताओं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत और बैठकें भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लाओस की राजधानी वियंतियाने में जापान के रक्षा मंत्री जनरल निकातनी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि जनरल निकातनी के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के बीच बेहतर साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। रक्षा मंत्री ने फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो टेओडोरो से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि फिलीपींस हमारी एक एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। श्री सिंह ने कहा कि भारत फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने को लेकर प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी देशवासियों से राष्ट्र प्रथम का दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। हैदराबाद में आज लोक मंथन के 4th संस्करण को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिकों को देश की सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विरासत को समझना चाहिए और हमारी अमूल्य परंपराओं को मजबूत करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि विविधता देश की एकता को सुदृढ़ता के इंद्रधनुष में पिरोती है और राष्ट्रीय एकता की भावना ने कई चुनौतियों के बावजूद देश को एकजुट रखा है। उन्होंने कहा कि सदियों से भारतीय समाज को विभाजित और कमजोर करने के प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कृत्रिम भेदभाव स्वाभाविक एकता को नहीं तोड़ सकते और भारतीयता की भावना से ओतप्रोत नागरिकों ने राष्ट्रीय एकता की मशाल जलाए रखी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्राचीन काल से भारतीय विचारधारा का प्रभाव दुनिया भर में दूर दूर तक फैला है और पूरे विश्व ने भारत की धार्मिक मान्यताओं, कला, संगीत, तकनीक, चिकित्सा प्रणालियों, भाषा और साहित्य की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन ने ही विश्व समुदाय को आदर्श जीवन मूल्यों का उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सदियों से साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शक्तियों ने न केवल भारत का आर्थिक शोषण किया बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने को भी नष्ट करने की कोशिश की। हैदराबाद के 2 दिन के दौरे के बाद राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिल्ली की कानून व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृहमंत्री ने आज दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। श्री शाह ने कहा कि दिल्लीवासियों को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराना प्रत्येक पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस पर मणिपुर की स्थिति को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगाया है। श्री नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मणिपुर हिंसा के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र के जवाब में यह आरोप लगाया है। श्री नड्डा ने श्री खड़गे को लिखे पत्र में कहा कि 1990 के दशक में मणिपुर में केंद्र और राज्य की कांग्रेस सरकारों के गैर जिम्मेदारी रवैये के कारण उग्रवादी और हिंसा फैलाने वाले संगठन मणिपुर में काफी मेहनत से अर्जित शांति को अब अपनी आदत के अनुसार भंग करने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में गोलीबारी और विस्फोट की घटनाएं आम थी, लेकिन आजादी के बाद अब इस क्षेत्र में पहली बार शांति, समृद्धि और प्रगति देखने को मिल रही है। श्री नड्डा के पत्र के जवाब में कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मणिपुर के लोग राज्य में जल्द से जल्द स्थिति के सामान्य होने, शांति बहाली और सद्भावना की कामना करते हैं। भारत ने अजरबैजान के बाकू में आयोजित COP29 सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में जलवायु को लेकर पर्याप्त वित्तीय प्रावधानों के बजाय केवल समन पर ध्यान केंद्रित किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की ओर से बोलीविया के वक्तव्य का समर्थन करते हुए अपना रुख स्पष्ट किया है। भारत ने दोहराया है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन और उसके पेरिस समझौते के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि विकासशील देश अभी भी जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने की प्रक्रिया में जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य, शमन कार्यक्रम, न्यायोचित परिवर्तन, वैश्विक स्टॉकटेक और अनुकूलन जैसे 5 महत्वपूर्ण मुद्दों अपना रुख रखा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है। आज दोपहर 1 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 379 था, जो बेहद खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता का स्तर 400 के पार पहुंच गया है। जहांगीरपुरी में यह 433, वजीरपुर में 420, रोहिणी में 405, पटपड़गंज में 390, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 368, ITO में 362 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 356 था। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2-3 दिन तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सुबह और शाम धुंध छाए रहने की संभावना है। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फिल्म प्रदर्शनों का आज दूसरा दिन है। विभिन्न विधाओं, भाषाओं और देशों से संबंधित 70 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जानी है। कई प्रसिद्ध फिल्मी हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फिल्म बाजार में आज बहुत अच्छा माहौल है, जहां बड़ी संख्या में निर्माता, वितरक और फिल्म उद्योग के हितधारक आए हैं। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 10 माओवादी मारे गए। सुकमा जिले के कोंटा इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर थी। इसी दौरान भेजी के जंगलों और पहाड़ियों में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में ये माओवादी मारे गए। सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए। इसके अलावा मौके में AK-47 और एक शेल्फ लोडिंग राइफल समेत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित अन्य इजरायली नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने की निंदा करते हुए इसे अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि इसराइल की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए अमरीका हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी न्यायालय के फैसले की निंदा की और कहा कि उन पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उधर इसराइल और हमास दोनों ने न्यायालय द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। हालांकि फ्रांस और नॉर्वे ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज पर्थ में खेला जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा।